तो भजन भजहुरे मन,
मैं यहाँ पर भजहुरे मन जो वैष्णव सॉन्ग है वो गाने वाला हूँ। आप इन इस भजन से शायद परिचित होंगे। जो लोग इसको जानते हैं और जिसके पास सुविधा है वो हमारे पीछे जोर से गाइए। इस भजन के बाद श्री प्रभुपाद जी ने इस पर जो टीका लिखी है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इसका अनुवाद बोलूंगा।
Translation is this.
Yes.
So this is translation first. All mine, just worship the lotus feet of the son of the Nanda, which make one fearless.
हे मेरे मन, नंद महाराज के पुत्र का चरण का पूजा करो कि जो सबको अभय प्रदान करने वाला है। ये मनुष्य जन्म जो अत्यंत दुर्लभ है उसको प्राप्त करके साधु संगत के माध्यम से ये जो विशाल भवसागर है उसको पार कर सकते हो।
Day and night I remain sleepless, suffering heat and cold, wind and rain.
दिन रात मैं निंद्रा से रहित और ठंडी गर्मी को सहन करता हुआ और वर्षा हवा आदि सबको सहन कर रहा हूँ। तुच्छ चपल सुख के लिए मैंने कई कृपण और दुष्ट बुद्धि के लोगों की सेवा की है।
What assurance of real happiness is there in all one's wealth, youthfulness, sons and family members?
किसी व्यक्ति के धन का, यौवन का, पुत्र और परिजनों का वास्तव में जो सुख है उसका क्या कोई प्रमाण है, क्या महत्व है?
This life is poverty like a drop of water on a lotus petal. Therefore, we should always serve and worship the divine feet of Lord Hari.
यह जीवन जो है वो कमल के पत्र पर पानी का जो बूंद होता है वो जिस तरह से अनिश्चित रूप से वहाँ है उसी तरह से इसलिए तुम्हें भगवान के चरण कमलों की पूजा और सेवा करनी चाहिए हमेशा।
It is the desire and great longing of Govinda Das to engage himself in the nine processes of bhakti, namely hearing the glories of Lord Hari and chanting those glories, constantly remembering him and offering prayers to him, serving the Lord's lotus feet, serving the Supreme Lord as a servant, worshipping him with flowers and incense and so forth, serving him as a friend, and completely offering the Lord one's very self.
गोविंद दास की नवधा भक्ति में जुड़ने की बहुत महान बहुत तीव्र इच्छा है। जो नवधा भक्ति में भगवान हरि के गुणों का श्रवण करना, उनके गुणों का कीर्तन करना, निरंतर उनका चिंतन करना, हमेशा उनको प्रार्थना करना, उनके चरण कमलों की सेवा करनी, दास के रूप में उनकी सेवा करनी, पुष्प और धूप आदि से उनकी पूजा करनी, उनके मित्र के रूप में उनकी सेवा करनी और संपूर्ण शरणागति से आत्मनिवेदन के भाव से उनको शरणागत होना।
That's Thank you. उसका उचित प्रभाव
हम श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य से चर्चा करेंगे। भज गुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। भज का अर्थ होता है पूजा, मन का अर्थ होता है मन।
पवन गोविंद दास
महान कवि गोविंद दास जो बड़े तत्वदर्शी थे और भगवान के महान भक्त थे, वह प्रार्थना कर रहे हैं, वह मन को विनंती कर रहे हैं, किंतु क्योंकि मन जो है वह मित्र भी है और मन सबका शत्रु भी है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को कृष्ण भावनामृत में विकसित कर सकता है तभी वो सफल हो सकता है। यदि वह अपने मन को शिक्षा नहीं दे सकता तब उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए गोविंद दास जो कि भगवान कृष्ण के महान भक्त है, उनका नाम ही है गोविंद दास, अर्थात गोविंद का दास। गोविंद का अर्थ है कृष्ण और दास का अर्थ है सेवक। यही सभी भक्तों की भावना होती है। वे हमेशा नाम के पीछे दास लगाते हैं, अर्थात वो सेवक है। तो गोविंद दास यह प्रार्थना कर रहे हैं, हे मेरे मन, कृपा करके नंद महाराज के चरण कमल का भजन करो, क्योंकि वह अभय प्रदान करने वाले हैं। इसमें कोई भय नहीं है। अभय का अर्थ है जहाँ कोई भय नहीं है, और चरण का अर्थ होता है चरण कमल। इसलिए वह अपने मन को यह सुझाव दे रहे हैं, हे मेरे मन, कृपा करके नंद महाराज के पुत्र के अभय चरण की पूजा करने में अपने आप को जोड़ दो। नंद नंदन का अर्थ होता है नंद महाराज का पुत्र कृष्ण, और उनके चरण अभय है, अर्थात भय से मुक्त है। हम यहाँ पर रुकेंगे और थोड़ा चर्चा करेंगे।
नमस्ते
इस भजन जो गोविंद दास ने लिखा है, इसमें कई अद्भुत बातें हैं जिस पर चर्चा हो सकती है।
But the first point and the point that Srila Prabhupada elaborates on in
उसमें से एक बात यह है जो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य की शुरुआत जिससे की है वो कह रहे हैं कि कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने से व्यक्ति निर्भय होता है। जैसे आज सुबह हम महाराज अम्बरीश की कथा का हम चर्चा कर रहे थे उसमें महाराज अम्बरीश एक बार अत्यंत कठिन समय से कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे थे। एक अग्निमय कृत्या उनकी हत्या करने के लिए पैदा की गई थी और वो अग्निमय जो कृत्या थी वो अपने प्रकाश से सबको भयभीत कर रही थी।
Maharaj Amrish was so trained in always remembering the Lord that he didn't even think to ask the Lord for his protection in that difficult situation.
Maharaj Amrish भगवान के चिंतन करने में इस तरह से अभ्यस्त हो चुके थे कि उन्होंने भगवान को अपने रक्षण के लिए भी प्रार्थना नहीं की। यद्यपि वो बहुत ही उत्तम कोटि की अवस्था है किंतु महाराज अम्बरीश ये एक प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे किस तरह से भक्त की इंद्रियां और मन पूर्ण रूप से वश में होती है। तो श्री प्रभुपाद इस श्लोक का बार बार उद्धरण करते हैं जिसका अर्थ यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है तो वह भक्त सभी प्रकार की भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है और उसकी इंद्रियां पूर्ण रूप से वश में हो जाती है। प्रबोधानंद सरस्वती जी ये बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा दृष्टि हो जाए उस भक्त की इंद्रियां ऐसी हो जाती है जैसे सांप है जिसके दांत निकाल दिए गए हैं, फिर उसमें किसी प्रकार का विषैला असर नहीं हो रहता। जिस सांप के दांत निकाल लिए हैं वो किसी को कुछ कष्ट नहीं दे सकते। इसी तरह से जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त करता है उसकी इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती है और मन भी वश में हो जाता है। तो महाराज अम्बरीश इस तरह से भगवान का चिंतन करने में मग्न थे कि जब वो कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे उस समय भगवान को अपने रक्षण के लिए प्रार्थना करना भी भूल गए। वो अपने स्वाभाविक कार्य में ही लगे रहे।
That which was most natural for him to do was to be absorbed in thought of the Lord.
और उनका वो जो स्वाभाविक जो कार्य था वो था निरंतर भगवान के चिंतन में व्यस्त रहना,
which made him completely fearless.
जो चिंतन करने से व्यक्त भक्ति जो भक्त जो होता है वो निर्भय हो जाता है. जैसे एक उदाहरण श्री प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में दे रहे हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि किस तरह से एक बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह में उठा के घूमती है. जब मैं छोटा बालक था तो मैंने व्यक्तिगत रूप से ये चीज को देखा था. तो हम हमारे महाराज कह रहे कि हमें मुझे नहीं पता था क्यों, लेकिन हमारे घर में एक बिल्ली थी और उनके बच्चे. बिल्ली के जो बच्चे थे वो बिल्कुल उसके पास में थे.
And when I woke up one morning, I saw all these kittens in a box on the porch.
तो जब मैं एक दिन सुबह उठा दूसरे तो देखा अचानक कि बिल्ली के साथ बच्चे उनके साथ है.
So naturally, I was so attracted to the kittens, I immediately opened the door and went out and I started picking up the kittens.
तो मैं बहुत ही खुश हो गया और दरवाजा खोल करके ये बच्चे से खेलने लगा.
So when I went back into the house and I looked out the window, I saw the mother picking up all the kittens and carrying them up and putting them way up in the rafters so nobody could touch them.
बाद में जब मैंने देखा कि घर के घर में जब मैंने प्रवेश किया उसके बाद खिड़की से देखा कि जो बिल्ली थी वो अपने सारे बच्चों को अपने मुंह में लेकर के मकान की छत के ऊपर ले गए ताकि कोई उसको स्पर्श न करे. तो जो माता बिल्ली जो थी उसने ये समझ लिया कि मेरे बच्चों को किसी ने हाथ लगाया है, तो बहुत भयभीत हो गई और अपने बच्चों को लेकर के ऐसी जगह रखना चाहती थी जहाँ पर कोई स्पर्श कर ही ना सके. तो मैंने देखा कि जो बिल्ली थी वो अपने एक एक बच्चे को उसके गले में दांत लगा करके उठा करके छत के ऊपर ले जा रही थी.
And I was thinking, what's the mother doing to the kittens?
और मैं सोचने लगा कि ये माता अपने बच्चों का क्या कर रही है.
It looked very horrible. Hanging by the neck. Teeth from the mother.
ये देखने से बड़ा भयानक लगा कि माता खुद अपने बच्चे के गले में अपने दांत लगा रही है.
And I wanted to go out with my sister, my big sister. She said, no, no, let him not go out.
तो मैं चाहता था कि मैं बाहर जाऊं, लेकिन मेरी बड़ी बहन थी उन्होंने मुझे रोक लिया, बोले नहीं बाहर मत जाओ अंदर ही रहो.
So each kitten, one by one, is being picked up by the teeth of the mother.
तो जो बच्चे थे एक एक करके अपने माता के दांत के माध्यम से उठाए ले जा रहे थे.
When the mother comes and picks the kitten up with the teeth.
So Shri Prabhupada is udaharan ka prayog kar rahe hain jisme kehte hain ki jo bacche the billi ke wo bilkul bhi bhaybit nahi the jab mata unko daant se utha ke le ja rahi thi.
Kitten just hangs there, doesn't resist, doesn't fight. My mother knows what she's doing.
To bacche jo the wo bilkul ऐतराज़ नहीं कर रहे थे, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं कर रहे थे, जानते थे कि मेरी माँ जानती है कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है. और बच्चे जो थे वो पूर्ण रूप से सुरक्षित अनुभव कर रहे थे.
But the same cat, when she shows her teeth to the mouse, is a different perspective.
तो वही बिल्ली अगर अपने दांत अगर किसी चूहे को दिखा दे तो सिचुएशन पूरा बदल जाएगी.
Same cat, same teeth, different perspective.
वही बिल्ली है, वही दांत है, लेकिन परिस्थिति अलग है.
So Prabhupada uses an analogy to describe how a devotee is fearless.
सुश्री प्रभुपाद इस उदाहरण का प्रयोग करते हैं यह बताने के लिए कि भक्त किस तरह से निर्भय होता है इवन मृत्यु के समय पर भी.
Fearless when facing death.
मृत्यु का सामना करते समय भी वो निर्भय रहता है.
Because the devotee is simply thinking, the devotee is always thinking of Krishna. Krishna is coming to take me home.
तो भक्त हमेशा कृष्ण का चिंतन करते हैं तो वह सोचने लगता है कि शायद कृष्ण मुझे घर ले जाने के लिए वह इधर आए
हैं.
तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करके भक्त निर्भय हो जाता है.
What is the cause of this fear?
इस भय का कारण क्या होता है?
In the Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada many times he quote this verse.
Srimad Bhagavatam mein Srila Prabhupada anek baar is slok ka udharan karte hain.
Vayam dhitiya vidhanesha kasyat ishat apitasya vakarnidos. That fear arises when a living entity misidentifies himself as the material body.
इसका अर्थ होता है कि भय का जन्म तब होता है जब आत्मा अपने भौतिक शरीर के साथ अपनी गलत पहचान करता है.
Because of absorption in external illusory energy of the Lord.
क्योंकि वह भगवान की जो बहिरंग मोहित करने वाली जो शक्ति है उसके प्रभाव में आ जाता है.
So fear arises when we absorb ourselves, invest too much of our energy, our consciousness in these bodies.
तो भय का जन्म तब होता है जब हम अपना चिंतन और अपना मन जो है वो इस शरीर के चिंतन में लगा देते हैं, शरीर में मग्न कर देते हैं.
Prabhupada uses another analogy.
श्री प्रभुपाद एक दूसरा उदाहरण भी देते हैं.
I always like using analogies. Prabhupada used so many.
मुझे उदाहरणों का प्रयोग करना अच्छा लगता है, विशेष करके जो श्रील प्रभुपाद बहुत उदाहरण दिए है.
In fact, Srila Prabhupada even used an analogy to explain how important analogies are.
तो प्रभुपाद उदाहरण प्रस्तुत करते हैं यह बताने के लिए कि उदाहरण कितने महत्वपूर्ण होते हैं.
He gave the analogy that if we're looking in the sky at night at the moon trying to see how it's moving, it's very difficult to see how it's moving simply by staring at the moon.
तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि रात्रि के समय में चंद्रमा को एक देखना, एक तक से देखना वो और उसके देखने से उसकी गति को जानना ये बहुत मुश्किल है.
Because the moon is very far away.
क्योंकि चंद्र जो है वो बहुत दूर है.
And we stare at it trying to see it moving. You can't see it moving.
और हम इतने दूर से चंद्र को देखते रहते हैं कि ये कैसे हिल रहा है, लेकिन ये संभव नहीं, हम नहीं देख सकते.
You may come back some time later and see, oh yes, it was over there, but now I see it's over there. But you can't actually observe it moving by looking at it.
तो हम कुछ समय के पश्चात फिर से आके देख सकते हैं कि पहले चंद्रमा इस जगह पर था, अब वो खिस करके दूसरी जगह चला गया, लेकिन वास्तविक रूप से हम उसको जाते हुए नहीं समझ सकते.
He says that though when you see the moon moving through the branches of a tree.
अगर ये कोई व्यक्ति चंद्र को वृक्ष की शाखाओं के बीच में से देखता है तो ये आसान हो जाता है.
Because the branches are close.
क्योंकि जो शाखाएं हैं वो बहुत करीब है.
And if we simply stare at the moon, we can see how it's moving from one branch to the next.
तो शाखाओं के बीच में अगर चंद्रमा है तो अगर उसको देखते रहते हैं तो एक शाखा से दूसरी शाखा की ओर चंद्र जा रहा है, ये दिखना आसान है.
So it helps to have something closer to our experience to understand that which is very far away, difficult to understand.
तो जो हमसे बहुत दूर है उसकी गतिविधियों को समझने के लिए जो हमारे पास है उसका उपयोग करना हमें बहुत सहायक हो सकता है.
So in the same way, this is why analogies are important.
तो इसलिए उदाहरण का बहुत महत्व है.
And Prabhupada gives the analogy about investing so much in the body.
और प्रभुपाद ये उदाहरण दे रहे हैं कि किस तरह से बहुत सारा ध्यान शरीर की ओर दिया जाता है. वे चर्चा करते हैं आत्मा की और परमात्मा के विषय में.
How the soul is situated in one body and he is the knower of the field of activities of his one body.
किस तरह से आत्मा एक शरीर में विद्यमान रहता है और वह अपने शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ होता है.
And how the super soul is situated within all bodies.
और किस तरह से परमात्मा जो है वो सभी के शरीर में विद्यमान होते हैं.
But the super soul is aloof. And he all he simply does is witnesses and gives sanction.
किंतु परमात्मा जो होते हैं वो पूर्ण रूप से इससे पर रहते हैं और वो केवल हमारे क्रियाकलापों को दृष्टि करते हैं, देखते हैं और उसकी अनुमति देते हैं.
So he gives the analogy that just like a person may have a brand new car.
और एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक ब्रांड न्यू गाड़ी है और उसने उस गाड़ी का जो पहला भुगतान है वो दे दिया है और वो गाड़ी बहुत महंगी है तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान से उसकी देखभाल करता है क्योंकि अभी तक वो गाड़ी पूर्ण रूप से उसकी नहीं हुई है.
So he has to continue to work to make payments for that car.
और उसको इस कार का भुगतान करने के लिए निरंतर कार्यों में व्यस्त रहना पड़ता है.
He has to maintain it, put it, make sure the oil is good in the car.
और उसको ध्यान में रखना पड़ता है कि गाड़ी में नियमित रूप से तेल डाला जा रहा हो.
He has to keep the car clean.
उसको गाड़ी को स्वच्छ भी रखना पड़ता है.
So much of his consciousness is absorbed. Maintaining that car.
और उसकी चेतना कितनी व्यस्त रहती है उस गाड़ी को देखभाल करने में.
So he says this man one day is driving along the road and he picks up another person, passenger.
और वो व्यक्ति उस गाड़ी को चला रहा है एक बार और दूसरे किसी व्यक्ति को गाड़ी में बिठाता है.
And while he's driving along, all of a sudden somebody comes.
और वो जब गाड़ी चला रहा है तो उसके मन में निरंतर एक प्रकार का भय रहता है कि कोई आके मुझे टकरा ना दे.
Now when the car was hit, that driver felt excessive pain.
और अगर यदि उस गाड़ी को किसी ने टक्कर लगा दी तो उस ड्राइवर को सबसे अधिक दुख होने वाला है.
Immediately got out of the car, looked at the side of the car, he was screaming what he saw.
वो तुरंत गाड़ी से बाहर आ जाएगा, चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा, हाय हाय मेरी गाड़ी को क्या हो गया.
He was feeling so much suffering.
उसको बहुत बहुत कष्ट हो रहा है.
But the passenger he picked up simply got out of the car and walked away.
उसकी गाड़ी में लेकिन जो दूसरा व्यक्ति बैठा था उसने तो दरवाजा खोला, बाहर निकल के चला गया.
They were both in the same car.
दोनों ही एक ही गाड़ी में बैठे थे.
Why was the driver suffering so much and the passenger not suffering?
जो ड्राइवर था वो बहुत दुखी हो रहा था और उसके साथ जो दूसरा व्यक्ति बैठा था वो बिल्कुल दुखी नहीं था.
Because of identification.
क्योंकि वो अपनी पहचान दे रहा था.
That's what this verse is saying.
इसी श्लोक में इस बात को बताया गया है.
Fear arises when the living entity misidentifies itself as the material body because of absorption in the external illusory energy of the body.
भय का जन्म इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति अपने आप को एक शरीर मानने लगता है, जिसका कारण है कि वो भगवान की जो बहिरंग माया शक्ति है उसके प्रभाव में आ जाता है.
The more we invest our energies in the body, then the more we identify.
अगर हम अपने शरीर में अपनी सारी शक्तियां लगा देंगे तो हम उस शरीर से अपनी पहचान करने लगते हैं.
Just as Govinda Das says, Edana Jovana Putra Parishna Nikitne Achi Parati Tire Kamala Dala Jala Jivana Dala Nama Vaja Vapari Parati Tire. Wealth, sons, wife, youth, family, what is there in it? Just as a drop appears on the lotus feet, such is this life.
तो गोविंद दास कहते हैं कि ये जो धन है, यौवन है, पुत्र है, परिजन है, उस सब का वास्तविक अर्थ क्या है? उन लोग का जो अस्तित्व है वो तो जैसा है कमल का जो पत्ता होता है उस पर पानी का जो बूंद रहता है, वो कब तक रहेगा कोई नहीं बता सकता. तो हमें भगवान हरि का पूजा करना चाहिए कि जो सबसे आवश्यक वस्तु है.
It's interesting how Govinda Das emphasizes how the worship of Sri Hari is the only necessity.
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह से गोविंद दास इस बात पर बहुत बल दे रहे हैं कि क्यों भगवान की पूजा करना यह सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है.
Sometimes you may hear the expression necessities of life.
कहीं कभी कभी हम जीवन की आवश्यकताओं को व्यक्त करते हैं.
When we hear this expression, necessities of life, what do we think of?
जब हम इस बात को सुनते हैं जीवन की आवश्यकता है, तब हम मन में वास्तव में क्या सोचते हैं?
Generally we think of food, air, sunlight.
स्वाभाविक रूप से हम भोजन का व्यवस्था, हवा, सूर्य प्रकाश इत्यादि की सोचते हैं.
Water,
पानी.
These are all necessities of life that immediately come to our mind when we hear that expression.
तो ये वो सारी चीजें हैं जब हम जीवन की आवश्यकताओं की बात सुनते ही सारी एक साथ हमारे दिमाग पर आ जाती है.
But actually they're not necessities of life.
किंतु वास्तव में वो हमारे जीवन की आवश्यकता नहीं है.
They're necessities for maintaining life in the body.
तो इस जीवन को सुरक्षित रखने की जो आवश्यकता है वो है शरीर.
Yes, all those things are necessary to maintain life in the body.
तो वो सारी चीजें तभी आवश्यक है जबकि शरीर में आत्मा को या जीवन को बनाए रखना.
But one who knows that life is eternal must understand that life also must have a necessity.
जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि जीवन को सुरक्षित रखने की जो आवश्यकताएं हैं, उसके साथ साथ उसके अंदर जो आत्मा है, जो जीवन है, वास्तविक जीवन, उसकी भी अपनी आवश्यकता होती है.
There's more than simply having necessities of maintaining the body. Life has its own necessity.
ये जो सारी आवश्यकताएं हैं वो शरीर का देखभाल करने के लिए आवश्यकताएं हैं, लेकिन जीवन की कुछ अपनी ही विशेष आवश्यकता होती है.
Govind Das says, let me always be absorbed in the worship of Sri Hari, the only necessity.
इसलिए गोविंद दास कहते हैं कि भगवान हरि की सेवा करना यह अंतिम आवश्यकता है जीवन को बनाए रखने के लिए.
Just as Lord Chaitanya describes firm faith, shraddha shaddhi kaha विश्वास का है सूची जाने चाहे कृष्ण भक्ति काले सावक नाम पिताया. Shraddha means firm, confident faith that simply by chanting Hare Krishna, all other subsidiary duties can be fulfilled.
तो जिस तरह से ये बताया गया है कि केवल एक श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा अगर हो जाए कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने के माध्यम से बाकी सारी गौण जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो अपने आप पूर्ण हो जाती है.
A devotee must have that firm, confident faith that what is the value of all my duties if I neglect chanting Hare Krishna.
तो इस बात से भक्त पूर्ण रूप से आश्वस्त होते हैं कि मेरी सारी जिम्मेदारियों का क्या महत्व होगा अगर मैं भगवान के नाम का जप करने में ध्यान नहीं देता.
Sometimes devotees, many times devotees ask me this question, Maharaj, how to find time to chant Hare Krishna? There's so many things.
कई बार बहुत सारे भक्त मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज मैं कैसे हरि नाम जप करने के लिए समय में कैसे निकाल पाऊंगा, कैसे निकालूं.
Devotees have very difficult time because they have so many obligations.
बहुत सारी चीज करने के लिए है. कई बार ऐसा विचार आता है भक्तों का कि बहुत सारे कर्तव्य पूरे करने होते हैं तो मैं कैसे करूं जप.
Once I get that done, once I get that taken care of, once I get that taken care of, then I'll have more time to chant Hare Krishna.
वो सोचते हैं कि एक बार मैं एक उस चीज का देखभाल कर लूं या दूसरी किसी चीज पर एक बार थोड़ा ध्यान दे दूं, किसी और एक चीज को एक बार समाप्त कर लूं, फिर मेरे पास जप करने के लिए बहुत समय है.
But Lord Chaitanya says that shraddha means firm, confident faith that simply by chanting Hare Krishna, all other subsidiary duties can be fulfilled.
किंतु ये विश्वास होना बड़ा आवश्यक है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप करने के माध्यम से बाकी सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो अपने आप सफल रूप से पूर्ण हो जाती है.
And conversely, that even if I fulfill all my subsidiary duties, but I don't chant Hare Krishna, what is the value?
तो उसके साथ साथ उसको ये भी विश्वास होता है कि मैं बाकी सारी जिम्मेदारियों का ठीक से पालन करने के बाद अगर मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर रहा हूं तो उसका क्या महत्व है.
This is Vyasadeva says that one who forsakes his material occupation to engage in the devotional service of the Lord, he may fall down in an immature stage, but there's never any danger of his being unsuccessful.
तो यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जो भौतिक कर्तव्य है उसका पालन करते करते भगवान का शरण भी लेता शरण लिया हुआ है, अगर उस शरण लेते समय अगर किसी समय उसका कभी पतन हो भी जाए फिर भी उसका जीवन जो है वो विफल नहीं होता.
On the other hand, the non-devotee, even though perfectly engaged in his occupational duties, doesn't gain anything.
लेकिन उसके सामने अगर कोई भक्त नहीं है, अगर वो अपने सारे कर्तव्य कर्म बहुत अच्छे ढंग से करता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है.
And in the next verse, Narada Muni tells Vyasadeva.
तो उसके आगे वाले श्लोक में नारद जी व्यासदेव को कहते हैं,
My dear Vyas, even though a devotee of Lord Krishna may sometimes fall down somehow or other, he certainly does not become a fruitive worker again.
हे मेरे प्रिय व्यास, मेरे भक्त कभी कभार अगर थोड़ा बहुत उनका पतन हो भी जाए फिर भी वो किसी कर्मी की तरह उनकी अवस्था नहीं होती है.
Because anyone who has once relished the taste of the lotus feet of Krishna, he'll never be able to forget that ecstasy again and again and again.
तो जिस व्यक्ति ने एक बार भगवान के चरण कमल का जो मद है हनी है उसका स्वाद अगर उसने चख लिया है तो वो उसको जीवन में कभी भी भूल नहीं सकता, उसको बार बार उसका स्मरण होता रहेगा. यह उस समय बताया जाता है जब नारद जी व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन कर रहे थे. तो कई बार भक्त लोग जब पूछते हैं कि महाराज मैं बहुत सारी चीज करने के लिए होती है तो मैं जप के लिए समय कैसे निकालूं?
And I usually say to them, do you find time to eat?
तो मैं उनको कई बार कहता हूं कि क्या आप भोजन के लिए समय निकाल पाते हैं?
Of course, everybody finds time to eat.
हाँ हाँ महाराज क्यों नहीं, भोजन के लिए तो सबको ही समय निकाल सकता है.
And I asked them, why?
क्यों, मैं जब उनको पूछता हूँ क्यों.
Because if I don't eat, they'll be undernourished.
अगर क्योंकि अगर मैं भोजन नहीं लूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा.
So I said, what's the difference therefore? If you don't check, you'll be undernourished.
तो मैं कहता हूँ उनको, तो फिर उसमें क्या अंतर है. ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि अगर तुम जप नहीं करोगे तो तुम बीमार हो जाओगे. लेकिन जब मैं जप करता हूँ तो बहुत सारी चीज मेरे मन में आ जाती है जो करने की होती है, तो वास्तव में मैं जप कर ही नहीं पाता हूँ. किंतु आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ होता है इस प्रकार की चिंतन का, ध्यान से. क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि भय का जन्म इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन जो है वो भौतिक चीजों के प्रति पूर्ण रूप से मग्न रहता है.
Similarly, if we want to become fearless, we have to counteract the absorption in the material energy by becoming absorbed in the spiritual energy.
उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति निर्भय होना चाहता है तो उसी भौतिक शक्ति में जो लगा हुआ मन है उसी मन को आध्यात्मिक शक्ति में लगाना पड़ेगा.
Prabhupada would many times quote the verse, smarta vya satatam vishno abhismarta vya unajatuchit sabhavini nisina shiva iti yon ina kinkara. Krishna must always be remembered, he must never be forgotten.
तो श्री प्रभुपाद कई बार इस श्लोक का उदाहरण करते हैं जिसमें बताया गया है कि निरंतर कृष्ण का स्मरण करो और कभी भी उनका विस्मरण नहीं करो. तो जितने भी शास्त्र में विधि और निषेध करने जैसे और नहीं करने जैसे कार्यों की चर्चा हुई है, ये सारे जो नियम है वो इस दो चीजों के दास है.
So the scriptures describe vidhis and nishes. Vidhis are prescribed activities which help us to remember Krishna.
तो शास्त्र में जो विधियों का वर्णन बताया गया है करने जैसे कार्य, वो उसका उद्देश्य है कृष्ण का चिंतन करना.
And nishes are prohibited activities which we avoid because they distract our minds from Krishna.
और निषेध का जब वर्णन होता है तो वो उन कार्यों के प्रति होता है जो हमें भगवान के चिंतन से हमारा मन को विचलित करें.
Just like when we take vows in initiation, we vow that I will chant Hare Krishna every day, minimum 16 hours.
तो जैसे दीक्षा के समय पर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं प्रतिदिन 16 माला का जप करूंगा.
This is prescribed activity which has helped us to remember Krishna.
तो ये उस विधियों में से है जो हमें भगवान का चिंतन करने के लिए सहायक रूप होती है.
And the nishedhas, well, I won't take intoxication, no illicit sex, no gambling, no eating.
और जो नहीं करने जैसे कार्य है, जो निषेध के कार्य है, वो हम कहते हैं कि मैं नशा, जुआ, मांसाहार एवं व्यभिचार से दूर रहूंगा. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक पर कुछ तात्पर्य लिखे है. उसमें उन्होंने स्मर्तव्यम सततम विष्णु के ऊपर बहुत अद्भुत चीज बताई है.
Generally, when we hear the word satatam, we think always.
Generally, हम जब सततम शब्द की बात करते हैं तो इसका अर्थ हम सोचते हैं कि हमेशा.
Just like Krishna says, satatam kirtiyanto mam Bhagavad Gita, always chanting my glories.
जैसे कहें भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं निरंतर मेरा कीर्तन करो, सततम कीर्तयन्तु माम.
He said, but in this verse there's a different meaning. He explains why.
किंतु वो कहते हैं कि इस श्लोक का अर्थ दूसरा होता है, वो बताता है क्यों.
He says, because if somebody is always remembering Krishna, then why does he have to bother to be absorbed in the shades?
तो वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति निरंतर कृष्ण का चिंतन करने में मग्न है पूर्ण रूप से, तो वो निषेध से दूर रहने के लिए क्यों सोचेगा?
It's like telling somebody who's always absorbed in speaking about Krishna, Prabhu, be careful, don't talk about Maya.
ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कोई व्यक्ति कृष्ण का गुणगान गाने में इतना व्यस्त, इतना मग्न है पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर बोल रहा है, और उस समय उसको कोई कहे आके कि प्रभु जी ध्यान रखना, माया के विषय में मत बोलना।
In fact, Shukadeva Goswami in the 10th canto of the Bhagavatam, he describes the nature of Paramahamsas.
वास्तव में शुकदेव गोस्वामी दसम स्कंद में परमहंस लोगों के जो स्वभाव है उसका वर्णन करते हैं।
Paramahamsas who have accepted the Lord within the core of their hearts.
वो कहते हैं कि परमहंस वो लोग होते हैं कि जिन्होंने भगवान को अपने हृदय की स्थान पर विराजमान किया है।
They are always attracted to discussing the topics of the Supreme Lord as if they're ever fresh.
तो वो निरंतर भगवान के लीला विषय में, भगवान के विषय में निरंतर चर्चा करते रहते हैं और वो नित्य हमेशा ताजे रहते हैं।
They're spontaneously speaking about Krishna, always.
वे भगवान का गुणगान गाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।
In the same way as materialists are spontaneously attracted to speaking about women and sex.
बिल्कुल उसी तरह से जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है वो स्त्री और शरीर सुख के विषय में बात करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है।
Why are materialists spontaneously attracted to speaking about such topics?
यह ऐसा क्यों है कि भौतिकवादी व्यक्ति इस प्रकार की चर्चा करने के विषय में हमेशा तत्पर रहता है?
Because that's what's in their heart.
क्योंकि उसके हृदय में वही सारी चीज विराजमान है।
That's what the that doesn't take much. If they're always meditating on this, it doesn't take much to trigger such topics in their tongues.
क्योंकि वो उनके हृदय में हमेशा वास करती है ये सारी बातें, इसलिए उनके जीवा तक आने में समय नहीं लगता, अचानक ही बोल सकते हैं।
Because they're always absorbed in hearing about, speaking about, remembering. Immediately, they see some object of the senses and they begin speaking.
क्योंकि वो निरंतर उसका श्रवणम कीर्तनम चिंतनम करते रहते हैं, तो इसलिए उनके मन में जो कोई बात होती है तुरंत जैसे किसी इंद्रिय भोग की वस्तु को देखते तुरंत बोल पड़ते हैं।
So Paramahamsas are those who have accepted Lord Krishna within the core of their hearts.
किंतु परमहंस जो होते हैं उन्होंने भगवान को अपने हृदय में विराजमान किया हुआ है।
They're spontaneously attracted to speak about Krishna.
तो वो भगवान के विषय में बात करने के लिए बहुत ही तत्पर और आकर्षित होते हैं।
They have spiritual vision.
उनके पास आध्यात्मिक दृष्टि होती है।
Why do such Paramahamsas who are always thinking about the Lord have to worry about nishedas?
तो जो भक्त, जो इस प्रकार के परमहंस लोग हैं, वो लोग निरंतर कृष्ण का चिंतन करने में जब व्यस्त होते हैं तो उनको निषेध के विषय में सोचने की क्या आवश्यकता है?
So Vishwanath Chakravarti Thakur says because nishedas are mentioned in this verse, smartavyam satatam vishnur.
क्योंकि इस श्लोक में निषेध का वर्णन किया गया है।
It's not talking about those who are always remembering the Lord.
तो वो उन लोगों के विषय में नहीं है कि जो निरंतर कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं।
He said the word satatam in this verse means every day.
इस श्लोक में सततम शब्द का अर्थ होता है प्रतिदिन।
Smartavyam satatam vishnur means every day one has to remember the Lord.
इसका अर्थ ये होता है कि प्रतिदिन व्यक्ति को भगवान का चिंतन करना चाहिए।
That is sadhana.
वो साधन है।
Sadhana means that every day the devotee is making the effort to absorb his mind in thoughts of the Lord.
Sadhana का अर्थ ही ये होता है कि भक्त प्रतिदिन अपने मन को भगवान के चिंतन करने में प्रवृत्त करे।
So therefore, Govinda Das is explaining in this song that the more we learn how to absorb our minds and thoughts of the Lord, the more we become fearless.
तो इसी तरह से गोविंद दास इस भजन में यह चीज का वर्णन करते हैं कि जिस तरह से अधिक भगवान का चिंतन करते रहेंगे उतना अधिक हम निर्भय होते जाएंगे.
Therefore, although we may hear about such great exalted souls as Maharaj Ambarish, who is always absorbed in thoughts of the Lord,
जिससे हम ये इस ऐसे महान जो भक्त है उनका उनके विषय में सुन सकते हैं कि जो लोग जैसे महाराज अम्बरीश जो हमेशा भगवान के चिंतन में मग्न रहते थे. हम कह सकते हैं कि हाँ वो तो बहुत आगे बढ़े हुए भक्त है, उनके लिए ये सारा करना आसान है.
But what about me?
किंतु मेरे लिए क्या, मैं क्या करूँ?
What does this have to do with me?
इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा?
I can hear about all these exalted souls, but yeah, of course they remember the Lord because they're advanced.
मैं उनके विषय में सोचता हूँ, सुनता हूँ, तब मुझे लगता है कि हाँ वो बड़े आगे बढ़े हुए हैं, तो उनके लिए स्वाभाविक है, लेकिन मैं तो आगे बढ़ा हुआ नहीं हूँ, तो मेरे लिए मुझे क्या होगा इससे, मुझे क्या फायदा है?
But in 11th canto of the Srimad Bhagavatam, in a discussion between Narada Muni and Vasudev,
किंतु 11वें स्कंद में नारद मुनि और वासुदेव के बीच में चर्चा हो रही थी.
And it just so happened, Vasudeva was asking the question to Narada Muni, please instruct me so I can become free from fear.
तो वसुदेव कहते हैं नारद मुनि को कि मुझे यह गाइड मार्गदर्शन दीजिए कि किस तरह से मैं भय से मुक्त हो जाऊं.
One of the verses that Narada Muni said to Vasudeva,
उसमें से जो नारद मुनि ने वसुदेव को जो श्लोक सारे बताए थे,
he said that pure devotional service is so transcendentally potent.
वो कहते हैं कि शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रबल शक्तिशाली होती है
that simply by hearing about it,
कि केवल उसका श्रवण करने मात्र से
simply by glorifying it in response,
केवल उसका वर्णन उसका गुणगान गाने से
simply by meditating on it,
केवल उसका ध्यान करने से
simply by faithfully and respectfully accepting that it exists,
केवल श्रद्धा से और आदर से यह सोच करके कि वो वास्तव में विद्यमान है,
I may not have it,
मेरे पास शायद वो ना भी हो सके,
but I always faithfully and respectfully accept that pure devotional service exists,
किंतु मैं बड़ी श्रद्धा से और विश्वास से आदर से ये विश्वास कर सकता हूँ कि ये शुद्ध भक्ति वास्तव में अस्तित्व में है.
And simply by praising it when we see it in others,
जब हम किसी और में उस गुण को देखते हैं तो उसका प्रशंसा कर करके.
Even a person who hates the demigods and all living entities in the whole universe can immediately become purified.
अगर कोई भक्त कोई व्यक्ति सारे देवताओं को और सारे सृष्टि में जितने लोग हैं उन सबको द्वेष करने वाला है, वो अचानक से एकदम से उसका भी शुद्धिकरण हो सकता है.
That's what it has to do with us.
तो यही हमारे साथ भी होगा.
We may not have it.
हमारे पास वो शुद्ध भक्ति ना भी हो,
but the more we hear about it,
किंतु जब हम उसके विषय में अधिक से अधिक सुनेंगे,
the more we repeat it after having heard about it to somebody else,
तो उसको सुनी हुई बात को हम बार बार दूसरों को दोहराएंगे,
the more we meditate on it,
जब हम उसका बार बार ध्यान करेंगे,
and have faith that it exists and maybe someday it will exist for me too,
तो जब ये विश्वास रखेंगे कि ये वास्तव में अस्तित्व में है, शायद कभी कोई दिन ऐसा आएगा जब ये चीज मुझे भी प्राप्त हो जाएगी,
and then we become eager to praise, we see it existing in others,
और उसके साथ साथ ये शुद्ध भक्ति बाकी जिन लोगों में है उन लोगों को देख करके उनकी प्रशंसा करना,
we become purified,
ऐसा करने से हम शुद्ध हो जाते हैं.
That's what it has to do with us.
यही चीज जो है जो हमें फर्क करती है,
we become purified.
हम शुद्ध हो जाते हैं,
we may become qualified for pure devotional service,
और हम शुद्ध भक्ति के लिए योग्य बन जाते हैं.
So every day some time must be designated for pure devotional service.
तो प्रतिदिन शुद्ध भक्ति के लिए कुछ न कुछ समय निकालना चाहिए.
And if we don't designate time every day for pure devotional service, what happens?
अगर हम शुद्ध भक्ति के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालते नहीं है तो क्या होगा? ये श्लोक कभी आपने पहले सुना
है?
तो जितने भी हमारे जो स्वधर्म है, जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है, वो सारे कर्तव्य कर्म हम अच्छे ढंग से करते हैं, किंतु अगर भगवान के संदेश को सुनने के प्रति हमारा आकर्षण नहीं होता तो हमारा किया हुआ सारा कार्य श्रम मात्र बन जाता है।
Therefore, Govindadas says, Durlabha Manava Janma Satsangye. To cross over the ocean of material existence,
तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये भाव सागर से बाहर पार होना चाहता है तो उसको भगवान के भक्तों के संग पर बहुत ज्यादा आधारित रहना चाहिए।
Seek out the association of devotees who are speaking about Krishna and become attached to
him. Kapil Dev apni mata Devoti ko kehte hai ki hey meri priya mata, agar tum shuddha bhakt banna chahte ho to bhagwan ke un bhakton ka sangat karo jo nirantar Krishna ke vishay mein charcha karne ke vishay mein aakarshit rehte
hain. This will counteract pernicious effects of all material attachments.
और इसका परिणाम यह आता है कि वह भक्त जो इस तरह से अनुकूल करता है शुद्ध भक्ति को, वो सब प्रकार की भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है।
So many other instructions Govinda Das has given in this bhajan.
बहुत सारी बातें गोविंद दास की इस भजन में बता रहे हैं।
We simply touched the beginning.
हमने केवल उसको स्पर्श किया है क्योंकि अधिक समय की आवश्यकता रहेगी।
I thank you all for kindly giving me this opportunity to be in your association.
मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर संग देने की आप लोगों ने मुझे संग दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
My dear god brother Jasobati Nandan Mahaprabhu for what he's done for all of you and for this Ahmedabad spreading Krishna consciousness here.
मैं जसोबती नंदन प्रभु का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इतना बड़ा मंदिर बनाया और आप सब भक्तों के लिए विशेष करके यहाँ पर गुजरात में अहमदाबाद में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। मैं उनके प्रति बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने यह श्रील प्रभुपाद उनके गुरु महाराज के आदेशों की पूर्ति करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को पूरा समर्पण कर दिया है।
As fixed in my determination to serve Prabhupada by having more of this association.
तो मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी इस प्रकार का मेरे गुरु के आदेशों का पालन करने के प्रति जो दृढ़ विश्वास है वो उनकी संगत के माध्यम से मुझे भी ऐसा भाव प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah, you want to ask question?
Huh?
You want to ask question?
I don't know.
It's late.
It's at 10. I got to leave for the airport really early.
Okay. No problem.
Huh?
Yes, that's fine. No problem.
This is okay?
Yep.
Okay.
Yes.
Well, we can take one or two questions.
कोई एक या दो प्रश्न ले सकते हैं किसी को है तो.
Just now you said that.
It's okay.
Just now you have said that even though one person, any person, if he is offending the demigods or any other person, still he will be purified as a pure bhakta. So is it not Vaishnava Prad if you do that or unknowingly?
But the verse didn't say offended, it said hates. Hates the demigods and all that again. He said talk about the actions, any actions he took against them. But this—that's a big topic. If we talk about the actions of the things.
Yes. Any other? Yes. Yes, Maharaj. Thank you, Maharaj. I guess.